नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कहते हैं काजल की काली कोठरी में अपना दामन बचाया जा सकता है, कांटों से लड़कर फूलों को पाया जा सकता है, और यदि इरादे हो बुलंद तो कैसी भी विकट परिस्थिति हो उससे पार पाया जा सकता है। आवश्यकता है बुलंद हौसले की, आवश्यकता है पॉजिटिविटी की, आवश्यकता है हिम्मत ना हारने की, और यही सीख आपको सिखाता है समाधान। और समाधान में हमेशा हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू
प्रातः जी। समस्याओं के लिए नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हौसले बहुत बुलंद हों, हम हिम्मत ना हारते हों, निराश ना होते हों, तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाती हैं, जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाती हैं।
बिल्कुल, जहां हिम्मत है, जहां दृढ़ता है, वहां भगवान का भी मनुष्य को साथ मिलता है। देखिए, दृढ़ता और हिम्मत का कदम यदि हम उठाएंगे ही नहीं तो भगवान हमारी ओर बढ़ेगा कैसे। इस संसार में बहुत लोग भगवान को दोष देते हैं कि वो हमें मदद नहीं करता। जो राजयोगी हैं वो भी कभी कभी ऐसा कहते हैं कि हमें परमात्म सहयोग की अनुभूति कम होती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जहां हिम्मत है वहीं परमात्म मदद है। अगर हम हिम्मत के कदम ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो हमारी ओर आएगा ही नहीं। हमें किसी ऑफिस में जाके काम कराना हो तो हमें जाना तो पड़ेगा ना। हम सोचें बिना जाए ही अधिकारी हमारा काम कर देंगे, और हम जाएं तो नहीं और शिकायत करते रहें कि लोग देखो कैसे भ्रष्ट हो गए हैं, हमारा काम नहीं करते, हमारी फाइल रोकी हुई है। हिम्मत बहुत आवश्यक है। सचमुच कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिस्थितियां, समस्याएं मनुष्य की हिम्मत को नष्ट कर डालती हैं, वो उसे ऐसा कहें कि मार डालती हैं कभी कभी, तो उसकी उमंग उत्साह को भी धराशाही कर देती हैं। लेकिन फिर भी जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान है, जो रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उनकी उमंगें रोज फ्रेश होती रहती हैं, नई नई उमंगें आई रहती हैं। और ईश्वरीय ज्ञान रोज प्रातः सुनने से सोई हुई चेतना पुनः पुनः जागृत होती रहती है, मनुष्य की सोई हुई शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि हम सवेरे उठें, थोड़ा स्वच्छ हवा में, शांत प्रकृति में घूमकर उसका परम आनंद लें। प्रकृति का जो सामीप्य है, सानिध्य है, उसका जो सुखद अनुभव है, उसको जरा प्राप्त करें तो विचार ब्रॉड हो जाएंगे, महान हो जाएंगे। और जो विचारों पर एक काली मासी आ जाती है, मनुष्य ऐसा डल और उदास सा हो जाता है कि ये परिस्थिति, वो परिस्थिति, बच्चों का भी साथ नहीं मिल रहा, पति भी गलत कार्यों में लगा हुआ है, काम धंधे में भी कुछ विशेष सफलता नहीं मिल रही है, तो चारों ओर से जब मनुष्य अपने को बंधा बंधा सा पाता है तो उसको निश्चित रूप से भारी लगता है। तो रोज ज्ञान श्रवण, ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण और सवेरे उठकर मेडिटेशन करना, ये वास्तव में समस्याओं को समाधान करने का सर्वोत्तम तरीका है। जो इन्हें छोड़ देते हैं उनके लिए समस्या भारी हो जाती है।
वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी, वेल बिगिन इज हाफ डन। और यदि सुबह की शुरुआत, जैसे आपने कहा, मेडिटेशन से यदि हम करें, सुंदर जो स्वस्थ वातावरण है उसमें विचरण करके अच्छे चिंतन में करें, कुछ सत्साहित्यों का अध्ययन कर लें, तो निश्चित रूप से हमने अपने अंदर एक प्रकार की एनर्जी डाल ली, एक पॉजिटिव एनर्जी जो सारे दिन हमें समस्याओं से मुक्त रखती है।
बिल्कुल यही बात है बस। इसलिए जो लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं और अच्छा चिंतन करते हैं, सवेरे का समय ऐसा होता है जब मनुष्य का मन शांत होता है, मन शांत होने से बुद्धि परफेक्टली काम करती है। उस समय यदि उठकर मनुष्य अच्छा चिंतन करे तो उसे पहाड़ जैसी दिखने वाली समस्याएं छोटी लगेंगी और उनका समाधान उसे पता चल जाएगा कि ये मार्ग नहीं, ये मार्ग है इस पर्वत को लांघने का। तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, जो ये कहावत है, इस पर यदि हर व्यक्ति चलने लगे तो जीवन की आधी समस्याएं तो समाप्त हो जाएंगी।
बिल्कुल, तो सुबह उठें और जल्दी उठ करके कुछ अच्छा चिंतन करें, ये बहुत आवश्यक है। जैसा आज आपने कहा भ्राता जी, मैं मेल की ओर आपको ले चलता हूं। ये हमारे पास अनाम मेल आया है और ये कहते हैं कि मैं गृहस्थ में रहकर पिछले 10 वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ और आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी का मुझे पूर्ण सहयोग मिल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 मास से एक महिला मेरी दुकान पर आ रही है। पहले तो वो महिला मुझसे यूं ही औपचारिक बातें करती थी, लेकिन अब खुलकर स्त्री पुरुष संबंध की बात करती हैं और मेरे करीब आने की इच्छुक हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उसका फोन न उठाऊं, उससे बात न करूं, लेकिन उसके बार बार फोन करने पर मैं उसका फोन उठा लेता हूं। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। कृपया बताएं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए।
देखिए, पवित्रता का मार्ग निश्चित एक बहुत सुंदर मार्ग है, और जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष की पवित्रता की शक्ति अपने अंदर संजोई हो, उसे सोचना चाहिए कि वो इस शक्ति को ऐसे ही नष्ट नहीं कर देगा। पवित्रता न केवल एक शक्ति है, लेकिन एक बहुत बड़ी डिविनिटी है, रॉयल्टी है। इसको यों ही किसी चक्कर में पड़कर नष्ट कर देना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं माना जाएगा। देखिए, ये माया ऐसी है, चारों ओर माया का साम्राज्य है। तो कभी कभी अगर मनुष्य ऐसा महसूस करता है, जैसा इसने कहा, कि वो चाहता नहीं है पर वो कमजोरी उसके अंदर काम कर रही है, ऐसा बहुत मनुष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में महसूस होता है कि वो गलत बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल देता है, वो क्रोध करना नहीं चाहता लेकिन कर लेता है, वो एक अमुक काम करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है, और जो वो चाहता है वो कर नहीं पाता। इन दोनों का ही कारण है मन की शक्ति का कमजोर पड़ना। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। मान लो किसी व्यक्ति को डायबिटीज है
जी।
और सामने बहुत अच्छी जलेबी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी वो अगर जलेबी खाता है, उसमें मिठाई बहुत है, तो एकदम से उसकी जो शुगर है वो हाई पहुंच जाएगी, उसको पश्चाताप होगा। अब इसको जीभ के रस को कंट्रोल करने के लिए मन की शक्ति की आवश्यकता है। जबरदस्ती वो करे, चलो उसे देखूं ही नहीं, भाग जाऊं यहां से, तो भी काम नहीं चलेगा, कोई दूसरी चीज वो खा लेगा। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को सर्वशक्तिवान से जोड़ना होगा। सीधी सी बात, जिसे हम राजयोग कहते हैं, जब उससे हमारा मन जुड़ जाएगा तो मन में उसकी शक्तियों का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। वी कैन गेन गॉडली पावर थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। ऐसा करने से शक्ति आ जाएगी। तो यदि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो इन्हें राजयोग की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि जो इन्होंने पवित्रता की धारणा अपनाई है उसमें ये बहुत दृढ़ हो सके और कोई भी आने वाली ऐसी वैसी बाधा इनके सामने ठहर ना पाए। इसमें भी कम से कम 2 घंटा मेडिटेशन की प्रैक्टिस इन्हें अवश्य करनी पड़ेगी। रही बात ये, उनसे इनको बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके निगेटिव विचार, उसके इम्प्योर वाइब्रेशंस अब इसको अफेक्ट करने लगे हैं, और जितना जितना ये उनसे कम्युनिकेशन करेगा, बात करेंगे या टेलीफोन से बात करेंगे, उतना उतना उसकी निगेटिविटी इसकी पॉजिटिविटी को नष्ट करने लगेगी। क्योंकि कभी कभी हमारी पॉजिटिविटी से निगेटिविटी का फोर्स ज्यादा होता है, बाहरी वातावरण में भी इम्प्योरिटी होने के कारण। इसलिए इनको विचार करना चाहिए कि जब इनकी पत्नी इनको सहयोग देती आई है, देखिए गहरा नाता तो पति पत्नी का होता है ना, जब उसने इनको पवित्रता के क्षेत्र में बहुत सहयोग दिया है, तो उनका सम्मान करते हुए भी इन्हें इस बात से मुक्त रहना चाहिए।
बिल्कुल, तो एक प्रकार से सुंदर अभ्यास ये करें। प्रताप जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा अभ्यास तो करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने भी अपने केस में कहा, लेकिन मन बार बार जैसे विचलित होता रहता है, धोखा देता रहता है, तो मन योग में भी एकाग्र नहीं हो पाता और मन इधर ही जाता है। तो कई बार मानव मन ये सोचता है कि चलो इधर तो कुछ सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका ही आनंद ले लिया जाए। ऐसी विकट और दुविधा वाली स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए?
ऐसी साधनाओं के पथ पर चलने वाले बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी दुविधा की स्थिति, विकट स्थिति आती अवश्य है। कबीर ने तो इस पे बहुत कुछ लिखा है कि ये माया तो महाठगनी है, सबको ठग लेती है, ये तो बड़ी बलवान है, तो बड़ी दुष्कर है, सबको परास्त कर देती है। और बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे जो विद्वान कवि हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में ऐसी बातें बहुत कही हैं। तो निसंदेह ये माया है, ये सेक्सुअल फीलिंग्स माया है, और जो व्यक्ति इससे हट कर चलता है, उसके साथ इसका द्वंद्व चलता ही है, क्योंकि मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं कोई सूक्ष्म या मोटी कमजोरी काम करती रहती है। लेकिन इसके लिए और आवश्यक है ईश्वरीय ज्ञान में परिपक्वता और एक विचारों में दृढ़ता। रोज ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे तो जैसा मैंने कहा नई जागृति आती रहेगी। इनको इनके विचार जो कभी कभी उनके विचारों से प्रभावित होकर डल और निगेटिव हो जाते हैं उससे ये बचते रहेंगे। लेकिन एक बात और इन्हें अपने मन में दृढ़ता पूर्वक लानी चाहिए कि जिस पथ पर मैंने कदम रख दिया है अब मुझे आगे ही बढ़ते चलना है, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैंने भगवान को वचन दिया है संपूर्ण पवित्रता का, तो मुझे उनको वचन देकर निभाना है। किसी के भी मोह ममत्व में फंसकर, किसी की भी दैहिक सुंदरता के अट्रैक्शन में आकर मुझे भगवान को धोखा नहीं देना है। देखिए ये अपने को भी धोखा देना है और भगवान को भी धोखा देना है। और जो व्यक्ति अपने को धोखा दे रहा है क्या वो उसको धोखा नहीं देगा जो उसको अट्रैक्ट कर रही है? उसकी गलती उन्हें रियलाइज होगी और वो कहीं ना कहीं उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन तब तक मनुष्य बहुत कुछ गंवा चुका होता है, उसके मन में फिर पश्चाताप चलता रहता है, कई उसके निगेटिव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा ये उससे बचकर रहें, बिल्कुल अवॉइड करें, अपने मार्ग में फिर से दृढ़ हो जाएं, अपने मन को बलवान बनाएं, तो निश्चित रूप से इन्हें परमात्म सहयोग भी मिलेगा और मुक्त हो जाएंगे।
बिल्कुल, और वैसे भी कहा गया है भ्राता जी कि आप पवित्रता की रक्षा करें तो पवित्रता आपकी रक्षा करती है, और पवित्रता नो डाउट हमारे सारे वेद धर्म शास्त्र जितने भी हैं सभी में पवित्रता की बहुत महिमा समाई हुई है। और यदि थोड़ी दृढ़ता रखते हैं ये तो जैसा आपने कहा इसे जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे और आध्यात्म के शिखर तक पहुंचेंगे।
चारों वेदों में एक मत से ये माना गया है कि ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। और लेकिन कभी कभी लोगों ने ऐसी जो पुराणों में या और बहुत सारे ग्रंथों में जिनमें कहानियां बहुत हैं ये जो वर्णन कर दिया कि फलाना ऋषि भी फेल हो गया, भाई विश्वामित्र भी फेल हो गया, भाई फलाने ऋषि को भी ये हो गया, शंकर को भी ऐसे हो गया था, तो इससे मनुष्य अपने मन को कभी कभी कमजोर कर लेता है कि जब बड़ों बड़ों को हो गया, ऋषि मुनियों को हो गया, जो घर छोड़ के संन्यास लेके जंगल में रहे, जब उनको कुछ हो गया तो हम किस खेत की मोली हैं भाई, हमें भी हो सकता है। नो, हम दूसरों से अपनी तुलना ना करें। कोई बड़ा कुएं में गिर गया है, उसने सुसाइड कर लिया है, तो जरूर थोड़ा हम भी करेंगे। जो काम कोई नहीं कर सका वो हम करके दिखाएंगे। जहां सब लोग फेल हो गए वहां हम फुल पास होके दिखाएंगे। ऐसी दृढ़ता रखने वाला मनुष्य कभी इस माया के कुचक्र में फेल नहीं होता।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मुझे लगता है कि इन्होंने जिन्होंने अनाम मेल हमें किया था इन्हीं के प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ये दृढ़ता रखेंगे और निश्चित रूप से सुंदर मार्ग पर चलेंगे। हमारे पास दूसरा जो मेल आया है भ्राता जी, ये कहते हैं दिस इज सिस्टर सुजाता फ्रॉम सिएटल, आई वॉन्ट टू आस्क दैट हाउ टू कंट्रोल निगेटिव थॉट्स। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, मन में व्यर्थ विचार निगेटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं।
बिल्कुल, ये वर्तमान की न केवल युवकों की लेकिन मुझे बहुत सारी माताएं बड़ी उम्र की, बहुत सारे पुरुष बड़ी आयु के ऐसा प्रश्न पूछते ही रहते हैं कि उनके मन में जब निगेटिव विचारों का फ्लो चलता है तो न तो वो उसे कंट्रोल कर पाते और इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें, उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में असफल, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं वहां उदास बैठे हैं, अगर वो किसी और फील्ड में कार्यरत हैं तो बिल्कुल निराश हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वास्तव में मैं इनको कहूंगा, देखिए हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है जी, ये इन्हें याद रखना होगा। जो कुछ हम सोच रहे हैं उससे उसी तरह की एनर्जी चारों ओर फैल रही है। अगर हमारे मन में निगेटिव विचार हैं तो एक ब्लैक कलर की एनर्जी चारों ओर फैलती रहती है, और जैसे कोई फैक्ट्री बहुत गंदा धुआं फेंक रही हो उस पर लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने का आरोप लगाते हैं, केस कर देते हैं, तो ऐसा निगेटिव विचार करने वाला मनुष्य भी चारों ओर के वातावरण में प्रदूषण फैलाता है, एक काली एनर्जी सप्लाई करता है जिसे और व्यक्तियों का दम घुटेगा। तो हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है, याद रखेंगे कि हमारे निगेटिव थॉट हमारे लिए असफलता का मार्ग खोल रहे हैं। इसलिए पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे सवेरे से ही अपने विचारों को शुद्ध करना है। देखिए जो हमारी दिन की शुरुआत होती है वहीं से हम अपने विचारों पे ध्यान देंगे। मैं इस बात पे बाद में आता हूं, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि कुछ जो गंदी चीजें मनुष्य देखता है, जिसे निगेटिव विचार चलते हैं, जब उसके बहुत निगेटिव विचार चल रहे हैं तब तो उसे ये पता नहीं चलता कि इनका बीज आखिर है कहाँ। लेकिन पहले उसने जरूर इनके बीज बोए हैं, गंदी पिक्चरें देखी हैं, गंदा खान पान खाया है, गंदे लोगों का संग किया है, गंदे नॉवेल्स पढ़े हैं, कुछ चित्र गंदे देखे हैं, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गए हैं। तो इन सब से आज इन्हें निगेटिव विचार बहुत अति में तूफान की तरह मन में उठते हुए नजर आते हैं। तो क्या करें कि सवेरे उठते ही थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, ये नहीं निगेटिव विचार बहुत आ रहे हैं तो देर तक सोए रहें, देर से अगर उठेंगे तो निगेटिव विचार और ज्यादा मन में आएंगे। इसलिए सवेरे उठकर हम अपने लिए थोड़ा सा समय दें, खुली हवा में, खुले आंगन में, अगर नदी और पानी है उसके पास थोड़ा घूम फिर लें। पानी के पास मनुष्य के विचार, पानी और वृक्ष, पेड़ पौधे, हरियाली, इन दोनों का सानिध्य जब मनुष्य के मन को मिलता है तो उसके विचार सुंदर होने लगते हैं। तो ऐसे में जब निगेटिव विचारों का फोर्स जीवन को दुखी करने लगे, ऐसे सुंदर स्थान पर जाकर कुछ अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छे गीत सुन लेने चाहिए, अच्छा साहित्य साथ ले जाने चाहिए, 10 मिनट पढ़ ले एकांत में। और जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, यदि उनको ऐसी समस्या आ गई है तो स्वमान का अभ्यास कर लेना चाहिए, अपने भविष्य स्वरूप का अभ्यास कर लेना चाहिए, अपने फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास कर लेना चाहिए, विचार एकदम सुंदर होने लगेंगे। तो सवेरे से ही अगर हम सुंदर विचार अपने मन में क्रिएट करेंगे तो ये निगेटिव विचारों का जो फ्लो चलता है ये बहुत ढीला पड़ जाएगा। दूसरी बात, सवेरे जो राजयोगी हैं उन्हें प्रतिदिन ईश्वरीय महावाक्य सुनने चाहिए, उससे नए विचार रोज इन्हें मिलेंगे, आत्म जागृति आएगी। और जो राजयोग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है, उन्हें कुछ सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, बल्कि अपने पास एक पर्सनल डायरी रखनी चाहिए जिसमें कम से कम 100 सुंदर विचार लिख के रखने चाहिए। मोटे अक्षरों में सुंदर विचार मिल जाते हैं, डायरियों पे भी लिखे रहते हैं, हर पेज पर नीचे लिखे रहते हैं। तो ऐसे सुंदर विचार जब वो पढ़ेंगे तो निगेटिव विचार समाप्त हो जाएंगे। और इन्हें याद रखना है कि हमारे पॉजिटिव विचार हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, हमारे पॉजिटिव विचार सफलता के द्वार खोलेंगे हमारे लिए, हमारे पॉजिटिव विचार हमारी पर्सनालिटी को बहुत चमकाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि यही तो मनुष्य को चाहिए जीवन में, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, सफलता मिलेगी, पर्सनालिटी बहुत आकर्षक हो जाएगी, हमारा भविष्य बहुत सुंदर होगा, हमारा भाग्य का सितारा चमकने लगेगा, क्योंकि संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य का निर्माण करती है। तो इस तरह यदि अभ्यास करें तो निगेटिव विचारों से ये मुक्त हो जाएंगे।
एक तो भ्राता जी, जैसे आपने कहा पहले की जो भरी हुई चीजें हैं, चलिए वो तो है, लेकिन अब वो निगेटिव चीजों को, व्यर्थ चीजों को, जैसे आपने कहा पत्र पत्रिकाओं में या मूवीज में या अन्य चीजों के माध्यम से जो हम निगेटिव चीजें अपने अंदर ले जा रहे हैं, जरूर जो चीजें अंदर जा रही हैं वो विचार के रूप में आएंगे, तो उन्हें रोका जाए और साथ ही सुबह उठ करके बहुत अच्छा अभ्यास किया जाए। प्रताप जी, सारे दिन भी यदि इस प्रकार के विचार आ रहे हैं या आने की संभावना है तो क्या सारे दिन भी हम कुछ अच्छे अभ्यास कर सकते हैं, कुछ विचार ले सकते हैं?
जो राजयोगी हैं जिन्होंने 7 डेज कोर्स किया है हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान का जी, हर घंटे में यदि वो एक बार 1 मिनट के लिए, मैं आत्मा हूं, मैं इस देह से अलग हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं इस देह से न्यारी हूं, आत्मचिंतन में 1 मिनट बिताएं, तो उनकी बौद्धिक एनर्जी भी बहुत बढ़ेगी और जो ये निगेटिव विचारों का फ्लो बाहर से भी आता रहता है वो रुक जाएगा। जैसे हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूं, वैसे ही हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, यानी इस शब्द के साथ एक एडजेक्टिव जोड़ देंगे। एडजेक्टिव क्या है कि मैं भगवान की संतान हूं तो मैं एक महान आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विघ्न विनाशक भगवान की संतान हूं तो मेरे पास भी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। इसे हम स्वमान कहते हैं, तो बीच बीच में इसे भी याद कर लेंगे, इसमें टाइम नहीं लगता 5-10 सेकंड, तो ये भी व्यर्थ संकल्पों को रोकने वाली चीज होगी। तो दो ये अभ्यास बहुत सरल हैं, और अगर किसी का कामकाज मान लो बिजनेस है उसका, या सर्विस भी है, जॉब है कहीं, तो बीच में कुछ ईश्वरीय महावाक्यों की बुक या कुछ प्रिंट मैटर, हमारे पास प्रिंटेड मैटर मिलते हैं, वो रख लें और 2-3 मिनट भी उसको पढ़ जाएं। देखिए, मैं शुरू में ये अभ्यास बहुत किया, मैं अपनी नोटबुक अपने कर्म क्षेत्र पर ही रख लेता था और सारे दिन में कम से कम 5 बार उसमें नजर डाल लेता था, 3-3 मिनट बस, तो वो विचार मन में जागृत हो जाते थे और किसी विचारों का द्वार बंद हो जाता था। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया जा सकता।
बिल्कुल, मतलब लक्ष्य रखा जाए कि हम अपने मन को व्यर्थ की ओर ना जाने दें, समर्थ की ओर लगाएं, उसके लिए हम स्वमानों का अभ्यास कर सकते हैं, या जैसे आपने कहा कि हम नोटबुक अपने पास रखें और उसे बीच बीच में पढ़ते रहें।
साथ साथ इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति कहीं भी अकेला तो काम करता नहीं
जी,
बिजनेस है तो 5-7 लोग उसके साथ होंगे, ऑफिस है तो 10-20 कितने भी लोग उसके साथ हो सकते हैं, तो अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखें, अपने दृष्टिकोण को बहुत अच्छा रखें। देखिए, मान लीजिए हमारे साथ 10 लोग काम करते हैं और हम उन्हें देखकर ये सोचते हैं, मैं ये व्यक्ति बड़ा खराब है, इसको बड़ा क्रोध है, और ये तो बड़ा अहंकारी है, या कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारे मन में ईर्ष्या हो रही है, देखा ये आगे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है हमारा अधिकारी, तो इनसे निगेटिव विचार बहुत चलेंगे। लेकिन अगर वो एटीट्यूड ही पॉजिटिव कर दें कि ये सब बहुत अच्छे हैं, देखो हमारे ग्रुप में हमारी ये 10 लोगों की फैमिली कितनी अच्छी है, सभी बहुत अच्छे लोग हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं, मान है, ये सब बहुत आगे बढ़े, इनका परिवार बहुत सुखी हो जाए, इनके बच्चे बहुत योग्य बने, तो यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे मन में बहुत सारे निगेटिव संकल्प आएंगे नहीं। ऐसे ही अपना व्यवहार, बोलचाल बहुत अच्छी रखनी चाहिए ताकि हमारे बोल से कोई डिस्टर्ब ना हो।
भ्राता जी, अब मैं आपको अगले मेल की ओर ले चलता हूँ। ये मेल हमारे पास आया है कोलकाता से, किरण पसारी जी लिख रही हैं कि मेरे को ट्रेन में ट्रैवल करने से बहुत डर लगता है, मैं कभी भी अकेले नहीं जा पाती हूँ और मुझे अकेले रहने में भी डर लगता है, प्लीज बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या विजुलाइज करना चाहिए।
हाँ, ये भय सबकॉन्शियस माइंड में इनके छपा हुआ है और शायद कई साल से ये ट्रेन में न चढ़ी हो इस डर से, तो वास्तव में इन सब के पीछे सीक्रेट क्या है कि पूर्व जन्मों में इनकी मृत्यु ट्रेन के द्वारा हुई है, चाहे ये लाइन क्रॉस कर रही थी ट्रेन से कट गई, चाहे इन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये भय बुरी तरह से छप गया है। अभी इसको इन्हें निकालना है, तो इसलिए इन्हें अकेले में भी डर लगेगा, ये अकेले कमरे में सोएंगी तो भी इन्हें डर लगेगा, कभी कभी इन्हें लगेगा ट्रेन मेरे ऊपर न चढ़ जाए, और ट्रेन में चढ़ना तो बिल्कुल इनको मुश्किल हो जाएगा। तो एक अभ्यास तो है कि जब सवेरे उठें, बिल्कुल उठते ही, थोड़ा जल्दी उठना है, और उठते ही संकल्प करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और निर्भय हूं, इसको 21 बार याद करना है, मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और निर्भय हूं, तो क्या होगा, ये संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उठते ही ये काम करना है, क्योंकि जब मनुष्य उठता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव है, तो उठते ही इसने संकल्प किया मैं निर्भय हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो इसमें पावर जो इसकी शक्तियां थी वो एक्टिव हो गई, और मैं निर्भय हूं, तो निर्भयता की बात सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर ली, और ऐसा इनको 21 दिन करना है
जी।
तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से इनको निर्भय बना देगा, और ये ट्रेन में अंदर तो क्या बैठना, छत पे बैठ के जा सकेंगे, बहुत अच्छा होगा। देखा होगा आपने, बहुत लोग छतों पे बैठ के चलते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, पता नहीं कुछ पकड़ते भी हैं या नहीं पकड़ते।
जैसे भ्राता जी आपने कहा कि सुबह उठ करके ये अभ्यास करें, और कई बार आपने कहा है कि रात को सोते समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा एक्टिव होता रहता है, तो सोते समय भी क्या इस अभ्यास को ये कर,
सोते समय भी ये कर सकते हैं, पर एक दूसरा अभ्यास भी इनको करना है, क्योंकि जब हम अपने को देह समझते हैं
जी,
तो मृत्यु से बहुत डर लगता है, तो जब किसी मनुष्य की इस तरह से मृत्यु होती है तो एक भय उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई तक चला जाता है। अब इसको एक दूसरा अभ्यास भी करना है, वो है सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास, कि मैं ये देह हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, यहां रहती हूं और मैं कभी मरती नहीं। आत्मा तो अनादि है, अजर अमर अविनाशी है, वो अजन्मा है, न उसका जन्म हुआ न उसकी मृत्यु होगी। तो मैं तो ऐसी आत्मा हूं, मैं नहीं मरती, मरता तो ये शरीर है, मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस, इन्हें रोज सवेरे संकल्प करने के बाद और सोने से पहले अपने को देनी होगी, और हो सके तो दिन में भी दो चार बार, ये दे केवल 21 दिन की साधना है, ऐसा कर लेंगे 5 बार सारे दिन में ये अभ्यास करें सोल कॉन्शियस होने का, अपने को आत्मा समझने का, और मैं अमर हूं, मेरी मृत्यु होती ही नहीं, ये भर दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में। मुझे मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु का भय सभी को होता है, क्योंकि मृत्यु में मनुष्य को कष्ट बहुत होता है। तो मैं अमर हूं, मेरी मृत्यु होती नहीं, मरता तो शरीर है, मैं तो बिल्कुल अजर अमर अविनाशी हूं, ये कॉन्शियसनेस ये बढ़ाएंगे। इन दोनों चीजों का अभ्यास करने से इनके अंदर से ये जो भय समा गया है वो धीरे धीरे निकलता जाएगा, और निश्चित रूप से ये निर्भय होकर संसार में कहीं भी, चाहे अकेले जाएं, अकेले सोएं, बिल्कुल निश्चिंत होकर जीवन यापन कर सकेंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। किरण जी को आपने बहुत सुंदर समाधान दिया है, और हम उम्मीद करेंगे कि जब ये इसका अभ्यास करें और इन्हें सुंदर रिजल्ट मिले तो हमें भी इससे अवगत अवश्य कराएं, ताकि हमारे दूसरे दर्शकों को भी इसका आनंद मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, डर एक ऐसी चीज है जो हमारे अंतर मन में, या तो पिछले जन्मों के कारण या बचपन में यदि हमने कोई चीज देख ली है तो समा गई है। कई लोग रस्सी को ही सांप समझकर डर जाते हैं, और फियर को यदि हम एक्सप्लेन करें तो कहा जाता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, अर्थात जो चीजें है ही नहीं फिर भी हमें प्रतीत होती हैं। हम डर का बहुत ही बहादुरी से सामना करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। तो आप जीतते चलें, यही समाधान टीम की आपके लिए शुभकामना है। नमस्कार।